इच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपार्षिभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। आज श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में सवेरे से ही कुछ वाल्मीकि रामायण और इसके बाद में रामचरितमानस का पाठ किया गया। अब हम श्री रामचंद्र जी के कुछ अंतिम चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं। कल मैंने बतलाया कि किस प्रकार लंका विजय करके राम आए, फिर राज्याभिषेक उनका हुआ, राजगद्दी पर बैठे। जिसमें बैठे उस समय से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती, कोई भी पिता अपना पुत्र शोक नहीं देखता। पहले पिता मरते थे तब पुत्र। सर्वत्र बसंत ऋतु छाई थी, सभी सभी अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में थे। इस तरह से सभी लोग सुखारी थे, दुष्काल नहीं पड़ता, वर्षा अत्यंत अधिक नहीं होती, धन धान्य खेती पूरी ठीक तरह से। 11,000 वर्ष तक राज्य किया। 11,000 वर्ष के अंतिम दिनों में किस प्रकार से जगत जननी सीता जी को वनवास दिया गया, लौकुश पुत्र हुए, वे वाल्मीकि ऋषि से पढ़ाई लिखाई की, और अंत में किस प्रकार से सीता जी ने पाताल प्रवेश किया मैंने बतलाया। जब रामचंद्र जी अपने लौकुश पुत्र को, भरत के पुत्रों को, शत्रुघ्न के पुत्रों को राज्य दिया, उस समय में काल वहां पर उपस्थित हुए। जैसे ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना से श्री कृष्ण प्रकट हुए, और जब लीला समाप्त हो गई तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में आए, निवेदन किया, हम लोगों ने जिस काम के लिए प्रार्थना की थी आप अवतीर्ण होकर के उसको पूरा कर दिया, पृथ्वी का भार दूर कर दिया, धर्म की संस्थापना की, संतों की रक्षा की। अब हम लोगों का की प्रार्थना है कि आप अपने स्वधाम में पधारिए, और पधारते समय हमारे लोक की तरफ से जाए। उसी प्रकार से यहाँ भी काल माने धर्म, धर्मराज वो उपस्थित हुए और राम से बोले, मैं आपसे कुछ एकांत में बातचीत करना चाहता हूँ, और हमारी आपकी बात कोई भी ना सुन सके, यदि कोई सुनेगा आएगा विघ्न बाधा देगा आप उसको प्राण दंड देंगे। रामचंद्र जी ने स्वीकार किया और लक्ष्मण जी को पहरेदार रख दिया कि हमारे यहाँ पर कोई ना आने पाए, तुम प्रहरी होकर के देखना। इधर में काल बातचीत करने लगा देवताओं की प्रार्थना से आप जगत में अवतीर्ण होकर के भूभार हरण किया, धर्म की संस्थापना की, संतों की रक्षा की, आपका पूरा काम हो गया है। अब आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वधाम में साकेत धाम में पधारिए। अभी यही बातचीत चल रही थी, भगवत इच्छा से दुर्वासा ऋषि पहुंचे। लक्ष्मण जी से बोले, मैं राम से भेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी अभी थोड़ा सा विश्राम कीजिए, इसके बाद में राम का आदेश मिलते ही आपसे उनसे मिला दूंगा। नहीं, एक सेकंड नहीं मैं ठहर सकता। अभी यदि नहीं मिलाएगा, अभी तुमको श्राप से जला करके भस्म कर दूंगा, और साथ ही साथ अयोध्यापुरी को भी पूरी जला करके भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो विचित्र बात है, तो मैं ही क्यों न मरूं केवल। उन्होंने कहा, अच्छा दीजिए, मैं अभी राम का आदेश। राम के पास में गए, राम ने, तुम आ गए, ये तो उचित नहीं हुआ। हमने प्रतिज्ञा की है, यदि कोई आएगा तो उसे हम मार डालेंगे। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि हमारा सारा वंश ध्वंस न हो, केवल नहीं मैं ही मरूंगा, ये सोच करके आपके पास में आया। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं अभी मिलना है, और नहीं मिलने दोगे तो मैं सारी अयोध्या नगरी को समाप्त कर दूंगा, तुमको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वंश के साथ में जला करके खाक कर दूंगा। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं ही मरूं, आप मुझे मेरी हत्या कर देंगे, इसलिए मैं खुद ही आया। अच्छा तो जाओ, भाई को तो मार नहीं सकता, किंतु आजीवन तुम्हारा हमने त्याग किया। ये भी लीला है, जैसे कृष्ण ने अपने परिवार को लीला से, जोग माया से ध्वंस कर दिया, कुछ भी नहीं किया, वो लोग बैकुंठ में ले लेकर के चले। उसी प्रकार से राम की लीला भी है, दुर्वासा जी को उन्होंने ही बुलवाया और अब स्वधाम में जाना चाहते हैं, इसलिए वे लक्ष्मण से बोले, तुमने अच्छा काम नहीं किया, मैं जीवन भर के लिए तुम्हें सदा के लिए त्याग करता हूं। लक्ष्मण बोले, जी अच्छी बात है। लक्ष्मण जी सरजू में गए, पानी में इतना प्राणायाम जोग लगाया और फिर समाधिस्थ हो करके वहां से एक बड़ा भारी सर्प निकला उनके शरीर से, और निकल करके अंतर ध्यान हो गया। अर्थात वे राम से पहले ही अयोध्या धाम साकेत में पहुंच गए। अब इसके बाद में राम लक्ष्मण जी का वियोग नहीं सह सके, उन्होंने अयोध्या वासियों को खबर दी, मैं अब सरजू में जाकर के शरीर को छोड़ करके हम चले जाएंगे, जिसको साथ जाना है वो आ जाए। अयोध्यापुरी के जितने लोग थे, नर नारी, अपने बच्चों को छोड़कर सभी के पीछे चले, और सरजू के गोपतार घाट एक है, गोपतार में तिरुभाव का स्थान, वहाँ जाकर और सरजू में प्रवेश किया, और सरजू में प्रवेश करते ही बस अपने उसी रूप से धाम को चले गए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी चले गए, उनके साथ जितने भी लोग आए थे सभी लोग धीरे धीरे इस प्रकार से राम की लीला समाप्त हुई, और यहाँ से छोड़ते गए और अपने धाम में, साकेत धाम में राम के साथ में मिलते गए। इस प्रकार से राम की करुणामयी लीला, अंत में भी करुणामयी लीला समाप्त हुई, और वाल्मीकि जी ने जो रामचरित्र लिखा था उसी के आधार पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जिसमें एक रामचरितमानस भी है, कंबू रामायण है, अध्यात्म रामायण है, और सब बहुत रामायण लिखे गए हैं। और जब तक गंगा और जमुना की धाराएं बहते रहेंगी तब तक लोग इन सब का गायन करते रहेंगे, इनका पठन पाठन करते रहेंगे। और लीला को श्रवण करने से यदि एक बूंद भी आंसू किसी के आंखों से गिर गया तो उसका भाव सागर तर जाएगा और उस लीला में उनका प्रवेश हो जाएगा। और नाउ ट्रांसलेशन।
हम लोग गुरु जी के साथ में गए थे,
आपके साथ हम लोग गए थे।
हाँ, तुम लोग हमारा साथ में गए।
नौ दिन का परिक्रमा किया था, भारत मिलन स्थान किया था सब लोग। और मैं लक्ष्मण स्थान होता था, मैं दुर्वासा के अंदर भेजे
थे। So since morning time, we have discussed the Valmiki Ramayana. Also, and from then to now, the Ramchandramanas part has continued. But especially tonight, we want to discuss the final portion of Sri Ram's pastimes. After defeating Ravan and conquering Lanka, Sri Ram, along with his associates, returned to Ayodhya. There Ram was immediately installed as king. In the 11,000 years of Lord Ram's reign as king of Ayodhya, there was all auspiciousness for everyone. No woman's husband would die before her. There were no widows. There was no any type of unhappiness. Everybody completely followed the system of four vananas and four ashrams. There was continuous presence of the spring season. There was no excessive rainfall. Everything was perfect. But on the hearing the words of the washerman, Sita was exiled to the forest where she gave birth to the sons of Ram, Bhav and Kush, who were educated by Valmiki Rishi. At the end of Ram's pastimes, Time, or Yamaraj, personally came to meet with Ram. Just like in the pastimes of Krishna, all the demigods came and prayed to Krishna, "You have descended to this world to remove the burden of the earth and to protect the sadhus, as well as destroying the demons. All these works have now been completed by you. Please return to your own abode." So in the same way, Yamaraj came on behalf of the devas and said to Ram, "I want to talk with you privately. If anyone else comes and hears our conversation, I want that you should punish them with death." Therefore, Lakshman was personally appointed by Lord Ram as a guard. And on behalf of the devas, Yamaraj also requested Lord Ram to return back to his abode. By the desire of the Supreme Lord, Durvasa Rishi came. He said, "I want to meet with Ram immediately." Lakshman tried to make him understand, "Just wait a second." And Durvasa immediately became like fire. "If I cannot meet with Ram exactly now, I will destroy the whole of Ayodhya and all your dynasty." Therefore, Lakshman was thinking, "It's better that I die alone rather than all the associates of Ram." Therefore, he broke the order of Ram and went to Lord Ram and said that Durvasa Rishi wants to meet with you. Then Lord Ram became very sad. "I took a vow that I will kill anyone who interrupts our meeting. Therefore, to reject someone is the same as death. Therefore, I have to reject you." Just like Yogamaya arranged in the finality of Krishna's pastimes, that there appeared to be a fight between Krishna and his devotees, but factually there was no fight, it was the arrangement of Yogamaya. We should understand that the appearance of Durvasa was a similar circumstance, the arrangement of Yogamaya herself. Therefore, externally, it appeared that Lakshman was rejected by Ram. He went to the bank of the Sayur River, he entered into Samadhi, and a snake came out of his body and disappeared. Therefore, for Lakshman went first to the eternal abode of Lord Ram. Ram could not tolerate the separation of Lakshman, therefore he requested all the Ayodhyavasis, those who want to come with me may come. Therefore everybody left. They put their small children down and all went to the abode of Lord Ram together. But that place where all entered the Nityalila is called Gupta, the place of separation. Gupta, sorry. Gurudev said, we went there with our Gurudev, and Gurudev took some of the senior devotees with him at that time. Therefore, all left and went to the eternal abode of Lord Ram. Therefore, the pastimes of Ram are full of pathos. So much emotion is there. Therefore, there are many different Ramayans. But Valmiki Ramayana is prominent. And as long as the two rivers, the Ganga and Yamuna, flow, then this Ram Katha will be heard and remembered by the devotees in this world. If someone can even shed one tear upon hearing these pastimes, then their life is successful.
अब मैं श्री रामचंद्र जी की कुछ शिक्षाओं को वर्णन करेंगे। मेरी समझ से ये तुलसी की तरह नए श्रीमद् भागवत का अनुवाद है हिंदी में। इसकी प्रत्येक लाइन दोहा सोरठे जो कुछ हैं छंद, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका ही अनुवाद है। क्यों, ये उसी के आधार पर सिद्धांत वही, किंतु रामचंद्र जी का वर्णन किया है। किंतु सिद्धांत दो है। कुछ कुछ लोग तुलसीदास जी को नहीं समझते, उनको मायावादी कहते हैं, किंतु यथार्थ बात यह नहीं है। वे भक्ति के पूरे पक्षधर थे, राम के उपासक थे, एकांत अनन्य। एक समय वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, एक समय श्री रामचंद्र जी अपनी सभा में आए और वशिष्ठ जी को, ब्राह्मणों को, सभासदों को और सारे नगरवासियों को राज्यसभा में बुलाया और बोले, मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। यदि मेरे कहने में कुछ अनीति हो तो आप लोग उसको मत मानिए, यदि उसमें कुछ अच्छा लगे तो पालन करें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, ये सभी लोग समझो। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट कृष्ण हैज गिवन ए चांस दैट वी कैन मीट बाय गिविंग ह्यूमन बॉडी। विदाउट दिस वी कैनॉट डू एनी साधन। देवता लोग भी मनुष्य जन्म को चाहते हैं। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सभी शास्त्र कहते हैं कि ये देवताओं के लिए भी या मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भक्ति का साधन कृष्ण को पाने का, कृष्ण के प्रेम पाने का ये साधन है। मोक्ष का द्वार, मोक्ष माने यहाँ पर वो मोक्ष मत समझो शंकराचार्य, यहाँ पर जगत से छुटकारा पा करके भगवान कृष्ण के निकट पहुँचने का नाम, यहाँ उनकी सेवा प्राप्त का नाम मोक्ष है। पाई न जही पर लोक सभा, ये मनुष्य मिला और फिर भी परलोक नहीं संवारा। आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, भगवान की मनुष्य जीवन में अनुभूति नहीं हुई, विषय वैष्णव में फंसे रहे, संसारी कार्यों में भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता, उन लोगों को धिक्कार है। वही कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वे दुर्भागा है जो मनुष्य शरीर को पाकर हमारी कृपा रूपी अनुकूल वायु पाकर आगर बतलाएंगे आगे, वो पीछे मनुष्य जन्म के बाद में जब सूकर कुकर जोनि में जाता है, शीर धुनधुन करके पछता हाय हाय क्या हुआ, और ये काल का दोष है, ईश्वर का दोष है, मिथ्या दोष लगा करके पछताते हैं हमने जीवन को व्यर्थ कर दिया। क्या यही तन कर फल विषय भाई, भाइयों बेटियों बहनों, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं करना है, केवल पुत्र उत्पन्न करके उनका लालन पालन करना ही शरीर का धर्म नहीं है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। भगवान का भजन सेकेंडरी हो गया, गौण हो गया, हम विषय वासनाओं में, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी लोग भी घर बार स्त्री पुत्र छोड़कर आकर के सद्गुरु पाकर के भी विषय संग्रह में कुछ लोग व्यस्त हैं, कहाँ सब प्रकार से गुरु के शरणागत होकर भगवान के लिए ही, भगवान को प्रसन्न के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, भूल जाते हैं, उनका जन्म बेकार हो जाता है। नर्तन पाई विषय मन देही, मनुष्य तन पा करके भी विषयों के भोग में ही मन लगाते हैं, पल सुधाते सठ पिछले वे सठ, प्याला में अमृत भरा पड़ा है उसे गिरा करके विष ग्रहण करते हैं। मनुष्य शरीर पा करके नहीं भगवान का भजन किया, वो अमृत का प्याला प्रेम का प्याला उलट करके गिरा देते हैं और विष का प्याला पीते हैं। ताब कबह भल कहे न कोई, शास्त्र साधु संत उसको कभी भी भला नहीं कहते, उनकी तो अवस्था है गुंजा ग्रह परसमन कोई, स्पर्श मणि पा करके गुंजा माला का आदर करते हैं, धिक्कार है उन्हें आकर लाख लक्ष चौरासी जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, भगवान का नित्य दास है, संसारिक दुख सुखों से अतीत है, किंतु भगवान को सेवा भूल करके 84 लाख जीवनियों में भ्रमण करता हुआ दुख सुख भोग करता रहता है, फिरत सदा माया करके, माया की प्रेरणा से 84 लाख जीवनियों में घूमता है, काम कर्म शुभ स्वभाव गुण घेरा कब कर करुणा नर देही देत ईश बन हेत, भगवान करुणा करके कोई हमारे गुण से नहीं साधन से नहीं करुणा करके मनुष्य देह देते हैं। नर्तन पाए भव बारित गोरे सन्मुख मृत अनुग्रह, वो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, सुलभम सुदृढ़ प्लव कृपा निर्देह माध्यम सुलभम सुदृढ़ प्लव सुकल्पम गुरु कर्णधार मयानुकूल नभस्वते रितम कुमान को अपने, उसी का देखो ठीक अनुवाद कर, नर्तन भव बारिध मोहबेर, संसार जो जन्म मरण का जो समुद्र या था उसमें बेड़ो बेड़ा है, बेड़ा मैंने विराट नौका जो इधर से उधर पार कर देती है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो और मेरी कृपा है, क्या संतों का संग हम मिला देते हैं, कर्णधार सदगुरु सदनावा, उस नामे कर्णधार गुरु जी हैं और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा सब कुछ मिलने पर भी जो भजन नहीं करता, गुरु मिल गया साधु संग मिल गया धाम में जन्म हो गया, इतना होने पर भी यदि नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय शोक निंदक मंदमति आत्मा पत्र, ऐसा मूर्ख ये निंदा के योग्य है, अपनी आत्मा को ही अपने समाप्त कर। उस श्लोक का भी यही तात्पर्य है, जो परलोक यहाँ सुख चाहे, यदि कोई इस लोक में परलोक में सुख से आता है तो देखो हमारे वचन को मानो। रामचंद्र जी कह रहे हैं सभा में, भक्ति मोर पुराण सुति गए, मेरी जो भक्ति है कौन सी उत्तमा भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्य, ऐसी भक्ति हो इसके लिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखान, कर्म ज्ञान योग के अधीन भक्ति नहीं है, परम स्वतंत्र है। केवल अनन्य भाव लेने से भक्ति देवी कृपा करती हैं। और भी कहते हैं देखो सुना होता यह अकथ कहानी, ये कहते हैं गरुड़ जी को मोह हो गया। उस समय में शंकर जी ने गरुड़ जी को काकभूषुंडी के यहाँ पर भेजा उनका अभिमान दूर करने के लिए, और जब पहुँचे तो वही कह रहे हैं काकभूषुंडी जी, सुना होता यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। ये जीव भगवान का अंश है, इसको इस प्रकार से कहना हो, जीव भगवान का विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश है, डायरेक्ट भगवान का अंश नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के किरणों में छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं, ऐसे ही भगवान से की शक्ति तटस्था शक्ति और उसमें जीव परमाणु के रूप में है, असंख्य अनंत है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, भगवान का नित्य दास है, किंतु चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल माया से रहित है, सहज भगवान के साथ में ही जन्म लेने वाला है अर्थात प्रकट होने वाला है, सुख की राशि है। सो माया बस भयो गुसान, सो माया बस भय, भगवान को भूल गया, भयं द्वितीया गविनीश, और माया के बस हो गया, पधो खीर मरकट की नाय, कैसे माया ने बांधा नहीं, खुद बद गया, खुद ही बद गया। कोई एक अत्यंत सुंदरी कोई नारी को देख करके कोई व्यक्ति स्त्री कुछ नहीं किया, ये अपने आप बद गया, वो बिल्व मंगल उस नारी के प्रति वृद्ध होकर के बद गए, जैसे ठीक वैसे ही बधो कीर मरकट की नारी, कीर माने सुख पक्षी, बहेलिया जंगल में जाकर बांस जो खोफुल रहता है उसके एक उसमें लगा करके वहीं पर रख देता है, और कुछ खाने को पास में रख देता है, जो ही सुख पक्षी आया लेने के लिए उस पर बैठा तब तक वो घूम गया नीचे चला गया, अब वो उड़ नहीं पा रहा, पकड़े हुए है अपने पंजे से और सोचता है कि हम बद गए, इतने में बहेलिया आकर के उसे पकड़ करके मार डाल। ठीक वैसे ही हम अपनी दुर्बुद्धि से इस माया जाल में फंसे हैं। मरकट बंदर, बंदर क्या करता है, जहाँ कुछ उसकी नज़र होती है जहाँ तक वो सोचता है जी यहाँ पर ये खाने के लिए तो झट ले लेगा। कुछ बंदर बजाने वाले होते हैं घड़े के अंदर में, जिसका मुख पतला होता उसमें बड़े बड़े आलू रख देते हैं और बंदर को दिखला देते हैं, बंदर आकर के झट हाथ से पकड़ लेता है आलू को, अब उसका हाथ निकलता नहीं है, और इतने में वो आकर के डंडे से मार करके उसे पकड़ लेते, तो ऐसे ही जीव है, ऐसे बंधे हुए हैं हम लोग, कीर मरकट की नाई तपते जीव भये संसारी, तभी से जीव संसारी हो गया। छूटन ग्रंथि हो, जितने जितने चेष्टा करता है छोड़ाने के लिए और भी पंजे में और बनता जाता है। श्रुति पुराण बहु करे उपाय, छूटन अधिक अधिक हो जाए, और भी अधिक अधिक संसार में फंसते फंसते फिर गधा सूकर जोनि इत्यादि पा करके उसमें लिप्त हो जाए। इसलिए इसमें फंसो नहीं भाई। ओ हे खगनायक, हे गरुड़ जी, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ है? रघुपत भगत बिना सुख से। हे गरुड़ जी, श्रुति पुराण वेद उपनिषद भागवत रामायण इत्यादि सभी ग्रंथ ये कहते हैं रघुपत भगत बिना सुख से। भगवान की भक्ति के बिना, श्री रामचंद्र की भक्ति के बिना, कृष्ण के भक्ति के बिना सुख नहीं है और नहीं है। जो समझते हैं युवावस्था में ओ मैं सुखी हूँ, अच्छे पुत्र हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर पढ़ रहे हैं पढ़ जाएंगे, रुपया कमा रहे हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, बुढ़ापा आएगा एक दिन, लकटी लेकर के चलनी पड़ेगी और इस शरीर को छोड़ देगा और घर वाले श्मशान में लेकर के जला देंगे, बस यही शरीर की गति है। इसलिए श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपत भगत बिना सुख ना है। भगवान की भक्ति के बिना कोई लोक परलोक कहीं भी सुखी नहीं रह सकता। कमठ पीठ बहुजाम ही बार, कछुए के पीठ पर खाक पर रोम नहीं होता, लोम नहीं होता। ये कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि कछुए के पीठ के ऊपर भी केश हैं, नहीं होता तो भी बंध्या सुत पर का ही मार, बांज के लड़के को किसी ने मार डाला, अरे बांज को तो पुत्र नहीं होता, ऐसा लड़का कहाँ से मरेगा, ये भी मैं मान लेता हूँ हो सकता है। फूल ही न बहुबुद्धि फूल है, आकाश में फूल कैसे खींच सकते, उसके लिए तो मट्टी जल इत्यादि की जरूरत है, आकाश में तो मट्टी नहीं। हो सकता है आकाश में भी फूल खिल जाए, जीव नलह सुख हरि प्रतिकूल, किंतु जीव भगवान का विरोधी बन करके प्रतिकूल होकर के भूल करके कभी नहीं सुख पा सकता। तिशा जाए बरु मृग जल पा, मृग जल माने क्या, जैसे मरुभूमि में गर्म हवा बहती है और उसके हरिण समझते हैं कि पानी की धारा है और जाते हैं पानी नहीं मिलता, छटपट करते हुए प्राण को छोड़ देते हैं। ऐसे ही ये मरुभूमि है, माया की गर्म हवा बह रही, हम समझते हैं कि अब थोड़ा सा चलेंगे आगे अब सुख मिले, एक बेटा हो जाए ना, बेटा हो गया, नाती हो गया ना, नाती होगा तो अब मैं सुखी हो जाऊँ, नहीं होगा, भगवान के भजन से ही हो सकता। बलजाम ही सशीष विशाल, खरगोश को सिंह नहीं होती, मैं मान लेता हूँ कि उसको खरगोश को भी सिंह हो गए। अंधकार पर रभ ही न सारे, सूर्य के उगने से अंधकार दूर हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि अंधकार ने ही सूरज को निगल लिया। राम विमुख सुख, राम विमुख न जीव सुख पाए, किंतु राम का विमुख होकर कृष्ण का विमुख होकर के कभी भी जीव सुखी नहीं रह सकता। हिमते अनल प्रकट पर हो, बर्फ इसे आग भी पैदा हो जाए ये भी मान लूंगा, किंतु राम के विमुख होकर के भगवान कृष्ण के विमुख होकर के कोई सुखी नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। बार मथे बरु हो ये घृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यश धाम अपे। पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए, नहीं निकलता, मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है, शिकता ते बनते, समुद्र की रेती होती है या मिट्टी धूल, पीसने से भले ही तेल निकल जाए ये भी असंभव। बिनु हरि भजन न भवत, बिना भगवान के भजन के संसार को नहीं तर सकते। यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत परम पक्का, इसको कोई भी ठेल नहीं सकता। सद्गुरु करो, सद्गुरु को पहचान करके करो। जिनको सांसारिक विषयों से वैराग्य है, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान की अनुभूति है, सब शास्त्र में उनके लक्षण दिए गए हैं, ऐसे गुरु को पा करके भवसागर को पार कर जाओ, इसके बाद में नहीं होगा। और भी एक उदाहरण कर देते हैं, कोई व्यक्ति निर्वाण मोक्ष चाहता है किंतु भगवान का भजन नहीं करता। बरसत बारिद भूत गही चारण चहत आकाश, ऐसे लोग कैसे हैं बिना भगवत भक्ति को आश्रय किए। यदि परलोक चाहते हैं, राम नाम परमारथ की आस, बरसत बारिद भूत गही चारण चहत आकाश, वे लोग कैसे हैं, आकाश से पानी की वर्षा हो रही है और बरसे की धारा को पकड़कर ऊपर जाना चाहते हैं, असंभव। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, इसलिए नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग भगवान का भजन करें, गुरु का पदाश्रय करके, और फिर भवसागर को उतर जाइए इसी मनुष्य जन्म।
There are some people who think that the Ramchandramanas of Tulsidas is not authentic because they say that Tulsidas is a Mayavadi. But this is completely untrue. All his Siddhanta completely follows the Srimad Bhagavatam. There is no difference between them. Only instead of doing for Krishna, he has done bhakti towards Ram. Therefore, one day, Ram called all to the assembly in Ayodhya and said, I want to say something. If I say something pinching, please do not take it the wrong way. If I say anything good, you may accept it. Ramji continued, we are very lucky to get this human form of birth. Even the demigods are desirous of such a chance. Because in the human form of birth only, one can perform sadhana bhakti to achieve Krishna and to achieve Krishna prema, love for Krishna. This human body is moksha's door, the doorway to liberation. By this we should not mean liberation in the sense of the maya bodies who follow Sankacharya. But we, in this sense we mean mukti, means one gets the chance for Krishna's service. But those people who have achieved the human form of birth but have hope, have no knowledge of what is the body and the soul. They do not discriminate between matter and spirit. Those persons who are simply engaged in sense gratification, then their life is completely useless. Most unfortunate is that person who achieves the rarely achieved human form of life, but does not use it properly for Hari Bhajan. Ramji said, oh my brothers and sisters and daughters, this body is not for making children or maintaining them. Bhajan should not become secondary. Bhajan should be primary. Even there are many brahmacharis who are living in the mud, who have given up wife and children and everything, but bhajan has become secondary and they are engaged in sense gratification. How are they? Such persons are like those who are given a pot of nectar but throw it away to drink poison, or those who throw away chintamani stones and wear instead a garland of useless gunja berries. Maya is the inspiration for this bewilderment of the living entity. Therefore she inspired the jiva to move through 8,400,000 different species of life. Devo Bhagavatam also described the same thing. This body is like a perfect boat, Ram said. And my mercy in the form of Sadhu Sangha is like a favorable breeze to cross the ocean of birth and death. But those persons who do not take advantage of the instructions given by the spiritual master, even though they may have achieved a bona fide guru or achieved birth in the holy place, still that person is like a killer of their own self. My bhakti or uttam bhakti, she is bhakti svatam sakala gunanidhi. She is completely independent and the abode of all good qualities. By her own independent desire, she manifests in the heart of any fortunate jiva. When Garuda saw the pastimes of Ram and Lakshman, he was bewildered. Therefore, Shankar sent him to Kalvasundi, the crow, in order for his bewilderment to be, his false ego to be removed. Kalvasundi gave all these following instructions. Iswara Angsa Jiva Abhanasi Chetan Amala Sahasukarasi. The living entity, the individual soul, is called Bhimanamsa, a separated part and parcel. He is not Swa-amsa, or a direct manifestation of Bhagavan. Rather, he is a separated part and parcel. Like a spark that emanates from a fire, the living entities, who are innumerable in number, have emanated from Bhagavan's own Tatastha Shakti. What is their sarup? They are all eternal servants of Krishna. They are all pure by sarup. They are sahaj sukarasi. They have no beginning like Bhagavan has no beginning. They are full of bliss, but they have bound themselves with Maya. Not that Maya is binding the jiva, but the jiva has bound himself by Maya. Like any man sees a nice looking girl, the girl has not done anything, but his mind is attached to her. Therefore, Kalpasandhi described Kir Makatikinyaya, just like a monkey or a parrot. The hunter, he has a stick with a fulcrum, and the parrot, out of greed to eat, he sits on the fulcrum to eat, and then the stick swings down and he is hanging upside down crying. Therefore, nothing is holding the parrot, but the parrot is holding the stick himself. Or like a monkey, the hunter, he puts a big potato in a narrow neck top, and the monkey out of greed,
Therefore,
Kalpasani said to Garuda, "Hey Garuda, all the scriptures, all the Vedas, the Ramayana, the Bhagavad, the Upanishads, all say, without bhakti to Ram, without bhakti to Krishna, life is completely zero and useless. A young man thinks, I will study, I will pass my exam, I will get money, but old age will come, soon you cannot walk with a stick until your relatives have to carry you to the cremation ground. Therefore, without Bhagavad Bhakti, there is no possibility of happiness." And Kalpasani says, "There may appear hair on the back of a turtle, which is impossible, but for argument's sake, may be. Someone who has no children may complain, oh, he was killed by his son, which is impossible because he has no children. But still, for argument, we can say, by churning water, you may get ghee. Horns may appear on the head of a rabbit. Darkness may go without the sun. Fire may come from earth. Fire may come from ice. By churning earth, you may extract oil. These things are all impossible, but still it may be. But without devotion to Ram, no one can be happy. That is completely fixed. Therefore, we should take shelter of a bona fide guru. What are his symptoms?" Kalpasandhi says, "He must be expert in the Shat scripture, must be renounced from material enjoyment, and must have direct realization of Krishna or Ram. But a person who wants liberation without doing bhajan of Bhagavan, but what is his endeavor? Like it rains, someone who catches hold of the raindrops and tries to lift himself up, it's impossible. Without Bhajan Bhagavan, no one can get liberation. Therefore, one should take shelter of the bona fide spiritual master, perform bhajan under his instructions, and one's life will be successful.
अंत में तुलसीदास की एक प्रार्थना करते हुए सुनते हुए और समाप्त करूँगा आज का। काम ही नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कहते हैं हे रघुनाथ जी, कामी व्यक्ति को जैसे नारी प्यारी होती है, उसके लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है सब कुछ, और जिस प्रकार से लोभी व्यक्तियों को अर्थ प्रिय है, एक एक पैसा करके जोड़ता है, घर वालों को भी प्रतिपालन पोषण नहीं करता, दूसरों को भी नहीं देता, बस जोड़ता जाता है और अंत में उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। ऐसा लोभियों का उस अर्थ के प्रति अनुराग होता है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे रघुनाथ जी, हे श्री रामचंद्र जी, उसी प्रकार से कामनी की भांति लोभी की भांति आपके प्रति हमारा प्रेम है। इसका एक भाव ये भी जाएगा श्रीमद् भगवत के अनुसार में, कामी व्यक्तियों को जैसे हमारे बिल्व मंगल को कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया, बदल दिया, उसी प्रकार से कोई हो तो कृष्ण में बदल दे भक्ति में, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो सूचित करता है जिस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण को सर्वांतःकरण से सेवा करती हैं अनन्य भाव से, ऐसा ही हमारा भाव श्री रामचंद्र। श्री रामायणम एक कीर्तन करो।
Therefore, finally, like a lusty man loves a woman, he is completely attached to her and steals everything for her service. Or like a greedy man is hoarding money, even he will not maintain his family, and it is the cause of his death. Therefore, finally, Kartma Sandhi prays, Hey Ram, like a lusty man towards a woman, like a miser towards his wealth, in the same way I want my mind to be attached to you. Therefore, really, this is following the same idea as given in the Bhagavatam. How a lusty person like Bilva Mangal would become attached to Krishna, and how the gopis achieve perfection by becoming absorbed in Krishna.
एक बात और याद आ गई, राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दुसगुण। भगवान का नाम करना यह एक अंक है और सब साधन शून्य है। यदि भगवत भक्ति के साथ में और साधन करो तब तो उसका 10-10 गुण मान बढ़ता जाएगा, और एक को हटा करके लाख शून्य रखो उसका कोई भी मूल्य नहीं। उसी प्रकार से हरे नाम अयो केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा, और उसमें भी महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दी है, उस महामंत्र का कीर्तन करने से अन्यासी भव सागर को पा करके कृष्ण प्रेम लाभ होगा।